त्रिविध जन्मनि सर्व प्राण भृताम अनियमीन प्रसक्ति तद अवधारणार्थवा। अब इस तरह एतस्मिन इस नव योनियों के भेद से व्याप्त तीन प्रकार के जन्म में सर्व प्राणी भृताम सब प्राणों को धारण करने वाले जीव अनियमीन प्रसक्ति, कोई उसमें नियम नहीं रहा, सारे जीवों की नव योनियां होंगी और तीनों प्रकार के जन्म हो जाएंगे। तो तद अवधारणार्थम आह, ये निश्चित करना आवश्यक है। 33 नंबर का सूत्र है, ये निश्चित करना आवश्यक है कि कौन से प्राणी का कौन सा जन्म होता है। क्योंकि नव योनियां, तीन प्रकार के जन्म सब जीवों में तो हो नहीं सकते, तो उनके कुछ जो विशेष नियम है उसका निश्चय करने के लिए आचार्य कहते हैं जरायुज अंडज पोतानां गर्भ। जरायुज अंडज और पोत, इन तीन जीवों का जन्म गर्भ जन्म है। यद जालवत प्राणी परिवरणम वितत मांस शोणितम तद जरायु, जो जाल के समान एक जाले जैसा प्राणी परिवरणम, उस प्राणी के ऊपर का एक परिवरण है यानी एक आवरण जैसा है, जो कैसा है वितत मांस शोणितम, चमड़े मांस और शोणित यानी रक्त से निर्मित है, तत् जरायु हो वो जरायु कहलाता है। यत नखवत, यत नख त्वक सदृश मुपात्त काठिन्यम शुक्र शोणित परिवरणम परिमंडलन तदंडम, जो नख अथवा त्वक चमड़े जैसा उपात्त काठिन्यम जो कठिनता को प्राप्त हो गया है ऐसा, शुक्र शोणित परिवरणम, शुक्र और शोणित का एक आवरण परिमंडल गोलाकार होता है, तद अंडम वो अंडा है, किंचित परिवरण अंतरीण परिपूर्ण अवयवो योनि निर्गत मात्र एव परिस्पंदादि सामर्थ्योपेत पोत, जो किसी भी प्रकार के आवरण के बिना परिपूर्ण अवयव वाला होकर योनि से निर्गत मात्र मतलब जन्म लेते ही साथ एव परिस्पंदादि सामर्थ्योपेत चलने फिरने और हलन चलन की सामर्थ्य से संपन्न हो जाता है वो पोत पोत है। बकरी के बच्चे हिरण के बच्चे पोत होते हैं, पैदा होते ही साथ चलने लग जाते हैं। जरायु जाता जरायुजा, जरायु में उत्पन्न होने वाले जरायुज हैं। अंडे जाता अंडजा, अंडे में उत्पन्न होने वाले अंडज हैं। जरायुजाश्च अंडजाश्च पोताश्च, जरायुज अंडज पोत पोता गर्भ योने हैं। जरायुज अंडज और पोत इनका समास कर दो तो द्वंद्व समास बनेगा जरायुज अंडज पोता, वे गर्भ योनि है, गर्भ से जन्म लेने वाले होते हैं गर्भ योनि वाले। यद्यमीषाम जरायुज अंडज पोतानाम गर्भो वध्रियते अथोपपाद केषाम भवति इत्यतः। अब यदि जरायुज अंडज और पोत इनका गर्भ निश्चित हो गया गर्भ जन्म, तो फिर उपपाद जन्म किनका होता है, इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं देव नारकाणाम उपपाद, देवानां नारकाणां च उपपादो जन्म वेदितव्यम्, देव और नारक जीवों का उपपाद जन्म जानना चाहिए। अथान्येषां किं जन्मेति अतः, अब बाकी जो बच गए उनका कौन सा जन्म है, तो इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं शेषाणां सम्मूर्छनम, शेष जो जीव हैं गर्भज और औपपादिक इनसे जो बाकी बच गए उन जीवों का जन्म सम्मूर्छन है। गर्भजीव्य औपादिकेभ्य चान्ये शेषाः, गर्भज और औपादिक से जो अन्य रह गए वो शेष कहलाए सम्मूर्छन जन्म, उनका सम्मूर्छन जन्म होता है। एते त्रयोपि, ये तीनों भी योगा नियमार्था, ये तीनों प्रकार के जो योग यानी सूत्र हैं वो नियमार्था नियम बतलाने के लिए हैं। जरायुजांड पूतानां गर्भ देवनारकाणाम उत्पाद शेषाणाम सम्मूर्छन, ये तीनों योग यानी तीनों सूत्र नियम के बताने के लिए है। उभय तो नियमश्च दृष्टव्य, और वह नियम दोनों तरफ से देख लेना। जरायुज अंडज पोतानामेव गर्भ, जरायु अंडज और पोत इनका ही गर्भ जन्म है, और गर्भ एवच जरायु अंडज पोताना, और जरायु अंडज और पोत जीवों का गर्भ जन्म ही है, इन्हीं का गर्भ जन्म है और इनका गर्भ जन्म ही है। दोनों तरफ से नियम लगा लेना। देव नारकाणाम एव उत्पाद, देव और नारक जीवों का ही उत्पाद जन्म है, और उत्पाद एव देव नारकाणाम, और देव नारक जीवों का उत्पाद जन्म ही है। दोनों तरफ ही लग गया। शेषाणाम एव सम्मूर्छनम, बाकी जो बच गए उन्हीं का सम्मूर्छन जन्म है, और सम्मूर्छनम एव शेषाणाम थी, और बाकी जो बच गए उनका सम्मूर्छन जन्म ही है, उन्हीं का सम्मूर्छन है, उनका सम्मूर्छन ही है। दोनों लगा। कोई भी वो तो बहुत सभी जीव आएंगे, सिर्फ पंचेंद्रियों में सैनी असैनी जीव दोनों प्रकार के होते हैं, गर्भज यानी गर्भज भी हो सकते हैं और सम्मूर्छनज भी होते हैं, सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं पंचेंद्रिय। लेकिन बाकी जो सभी हैं, बाकी एक से लेकर चार इंद्रिय वाले जो जीव होते हैं वो सारे सम्मूर्छन होते हैं। तेषाम पुनः संसारिणाम, उन संसारी जीवों का त्रिविध जन्म ना माहित बहु विकल्प नव योनि भेदाना, तीन प्रकार के जन्मों वाले और प्राप्त हुए हैं बहुत सारे विकल्प जिनको, और नव योनियों के भेद जिनके, ऐसे उन संसारी जीवों के शुभाशुभ नाम कर्म विपाक निर्वर्तितानि, शुभ और अशुभ नाम कर्म के फलस्वरूप निर्वर्तित यानि रचित बंद फलानुभव भवनाधिष्ठानानि, बंद के फलों का अनुभवन करने के लिए जो अधिष्ठान यानि आधार है, ऐसे शरीराणि कानि इति, अतः शरीर कितने होते हैं, इसलिए यहाँ से सूत्र कह रहे हैं औदारिक वैक्रिय का आहार तेजस कारमणानि शरीराणि, पांच प्रकार के शरीर हैं। हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, बंद का जो फल है वो शरीर के बिना अनुभव करना मुश्किल, चाहे वो सूक्ष्म कारमण शरीर हो या कोई भी शरीर हो, शरीर रहित जो सिद्ध भगवान है उनको कुछ बंद ही नहीं है तो अनुभव क्या होगा, होता ही है तेजस शरीर तो हमेशा ही रहता है। अनादि संबंधे च सर्वस्य, आगे आ रहे हैं सूत्र, विशिष्ट नामकर्म उदय आपादित वृत्तीनि शीर्यन्ते इति शरीराणि, विशिष्ट नामकर्म के उदय से प्राप्त हुई है परिणति जिनको, और जो शीर्यन्ते जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं समय पाकर इति शरीराणि, इसलिए उनको शरीर कहते हैं। औदारिकादि प्रकृति विशेषोदय प्राप्त वृत्तीनि, औदारिक आदिक जो कर्म की प्रकृतियाँ हैं उनके विशेष यानी इनके भेदों के उदय से प्राप्त हुई है वृत्ति जिनको, परिणति जिनको, ऐसे औदारिक आदि नहीं, औदारिक आदिक है। उदार स्थूलम, उदार के क्या, उदार के ऊपर अनुस्वार है क्या, होना चाहिए उदारम होना चाहिए, उदार कहते हैं स्थूल को। उदारे भवम उदारम प्रयोजनम अस्येति वा औदारिकम, जो स्थूल में उत्पन्न हो रहा है अथवा स्थूलता जिसका प्रयोजन है, स्थूल होना जिसका प्रयोजन है उसको औदारिक कहते हैं। शब्द की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, अष्ट गुणेश्वरीय योगाद देकानेकाणु महत् शरीर विविध करणम विक्रिया, आठ गुणों के ऐश्वर्य के योग से समागम से एक और अनेक छोटे बड़े शरीर को करना, माने शरीर विविध रूप से बना लेना, उसको विक्रिया कहते हैं। सा प्रयोजनम अस्येति वैक्रीकम, वो विक्रिया करना जिस शरीर का प्रयोजन है उसका नाम है वैक्रियक, यानी जिस शरीर के द्वारा विक्रिया हो सकती है उसको वैक्रीक शरीर कहते हैं। सूक्ष्म पदार्थ निर्जनार्थम असंयम परि जिहीर्षया व प्रमत्त संयतेन आह्रियते निर्वर्त्यते तत् इति आहारकम्, सूक्ष्म पदार्थों की जानकारी के लिए और असंयम के परि जिहीर्षया, परिजिहीर्षया ने परिहार करने की इच्छा, जोहोत्यादि गण होने के कारण जिहीर्षा शब्द बनाया और परि उपसर्ग लगा दिया है। तो सूक्ष्म पदार्थ को जानने के लिए और असंयम से बचने के लिए जो प्रमत्त संयत द्वारा आहरियते, जो शरीर रचा जाता है, तत् इति आहारकम्, वो आहारक शरीर होता है। ये तेजो निमित्तम तेजसी वा भवन, जो तेज का निमित्त होता है अथवा तेज में होता है, उत्पन्न होता है, तत् तैजसम, वो तैजस शरीर है। कर्मणां कार्यम कर्मणम, कर्मों का जो कार्य होता है वो कर्मण है। सर्वेषां कर्म निमित्तत्वे भी, सभी शरीर कर्मों के निमित्त से होते हैं, लेकिन तो भी रूढ़िवशात, रूढ़ी के वश से, परंपरा चली आ रही इस कारण से, विशिष्ट विषय वृत्ति रवसेय, विशिष्ट विषय मैंने कर्मण शरीर में ही कर्मण शरीर का नाम चलता है, ऐसा जान लेना चाहिए। यथौदारिक यथौदारिक सेन्द्रियरुपलब्धिस तथेतर तथेतरेशाम कस्मान न भवति इति आता। बोले कि जिस प्रकार औदारिक शरीर को अपन इंद्रियों से जान सकते हैं, तो इतरेशाम बाकी शरीरों को क्यों नहीं जान सकते हैं? तो आचार्य कहते हैं परम सूक्ष्म, आगे आगे वाले शरीर सूक्ष्म होते हैं। परम शब्द स्यानेकार्थ वृत्तित्वे पी विवक्षातो व्यवस्थार्थ गति। परम शब्द जो है वो अनेक पदार्थों में परिणत होने पर भी विवक्षा के कारण, यानी यहाँ पर आचार्य उमा स्वामी की जो भावना है उसके कारण व्यवस्थार्थ गति, कुछ व्यवस्था के प्रयोजन से उसमें परिणति हो रही है। पृथक भूतानाम, पृथक रूप से शरीराणाम, जो पांच प्रकार के शरीर बतलाए हैं उनमें सूक्ष्म गुणेन वीप्सा निर्देश, सूक्ष्म गुण होने के कारण वीप्सा निर्देश है। परम दो बार कथन किया है, क्रियते परम इति। औदारिकम स्थूलम, औदारिक स्थूल है, तथा सूक्ष्म वैक्रीकम, उससे सूक्ष्म वैक्रीक है, तथा सूक्ष्म आहारकम, उससे सूक्ष्म आहारक है, तथा सूक्ष्म तेजसम, उससे सूक्ष्म तेजस है, तेजसात कारणम सूक्ष्ममिति, तेजस से कारण सूक्ष्म होता है। इस प्रकार यदि परम सूक्ष्मम प्रदेशतोपि न्यूनम परम हीनमिति विपरीत प्रतिपत्ति निवृत्त्यर्थम आह। बोले कि अगर वो आगे आगे के सूक्ष्म है शरीर, तो फिर उनके परमाणु भी न्यून होंगे, जो जितना सूक्ष्म है उसमें परमाणु उतने कम होंगे, तो ऐसा विपरीत अर्थ न निकल जाए, इसलिए अगला सूत्र कहते हैं प्रदेश तो संख्य गुणम प्राप्त तेजसात। प्रदेश की अपेक्षा, परमाणुओं की अपेक्षा, तेजस के पहले तक असंख्यात असंख्यात गुणे होते हैं। प्रदिश्यन्ते इति प्रदेशा परमाणुः, जो एक प्रदेश में प्राप्त हो जाते हैं वो प्रदेश कहलाते हैं, परमाणु कहते हैं। संख्याम अतीतो असंख्येय, संख्या से जो अतीत है वो असंख्येय, असंख्येयो गुणस्य तदिदम असंख्येय गुणम, असंख्यात है गुणा जिसका, उसको असंख्येय गुण कहते हैं। कुतः क्यों, किस अपेक्षा से, प्रदेशत प्रदेश की अपेक्षा, न अवगाहत आकार प्रकार की अपेक्षा से नहीं है, सिर्फ परमाणुओं की मात्रा अधिक होगी आगे आगे के शरीरों में, आकार भले छोटा हो या कैसा भी हो। परम इत्यनुवृत्ति है, परम जो है वो पिछले सूत्र में था, तो उसकी यहाँ अनुवृत्ति लगा लेना। तो आ कार्मणात् प्रसंगे, कार्मण तक का जो प्रसंग आता है, तो तन निवृत्त्यर्थमाह प्राक तैजसादिति, उसकी निवृत्ति के लिए, उसका निषेध करने के लिए प्राक तैजसात ये शब्द दे दिया, कि भाई तेजस से पहले तक औदारिकाद असंख्ये गुण प्रदेशम वैक्रीकम, औदारिक शरीर से असंख्यात गुण प्रदेश वाला वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रीकाद असंख्ये गुण प्रदेशम आहारकमिति, और वैक्रिक से असंख्यात गुण प्रदेश अधिक आहारक शरीर में होते हैं। इस प्रकार को गुणकारक कितना गुणा करेंगे, बोले पल्योपम असंख्ये भाग, पल्योपम का असंख्यात वा भाग। यद्येवम, यदि ऐसा होगा तो परम महापरिमाणम प्राप्त होती, आगे आगे के शरीर बहुत बड़े आकार के बन जाएंगे। बोले जब इतने परमाणु अधिक हो रहे हैं उसमें, पल्योपम के असंख्यात विभाग में असंख्यात समय होते हैं, तो उतने असंख्यात समय का गुणा कर रहे हैं। औदारिक शरीर के परमाणुओं में इतना असंख्यात गुणा करो तो वैक्रिक शरीर के परमाणुओं का हिसाब आता है, उसमें इतना और गुणा करो तो फिर आहारक शरीर के परमाणुओं का हिसाब आता है, तो शरीर बड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो आचार्य कहते हैं नैवम, नहीं होंगे। क्यों? बंध विशेषात, बंध की विशेषता के कारण परिमाण भेदाभावस, तूल निचयाय पिंडवत, जो परिमाण का भेद है वो नहीं बनेगा। वो एक ऐसा बंधन होता है विशेष प्रकार का कि जिसके कारण आकार बड़ा नहीं होता, आकार छोटा होते हुए भी परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती है। जैसे तूल निचय और अय पिंडवत। तूल का मतलब होता है वो एक अकौवा नाम का पेड़ होता है, आंकड़ा बोलते हैं उसको। उसका जो फल होता है उसको खोलो तो अंदर वो रेशे वाला एक बीज निकलता है, ऐसे हवा में उड़ता रहता है। उसके रेशों को ऐसे इकट्ठा कर दो और एक इतना गोला बना लो, और उतना ही एक गोला लोहे के उसका ले लो, तो वजन किसका ज्यादा होता है? लोहे का। क्यों? आकार तो छोटा है। तो उसका कारण यह है कि लोहे में घनत्व ज्यादा है और ये बहुत हल्का फुल्का है, बिल्कुल इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार ये औदारिक शरीर भले बड़ा हो दिखने में, 500 धनुष, 5.5 धनुष और 3 कोस तक का होता है औदारिक शरीर जो होता है, 3 कोस तक का होता है मनुष्यों का। और त्रियंशों का औदारिक शरीर कितना होता है? वनस्पति की अपेक्षा से 1000 योजन का कमल थोड़ा अधिक, और फिर एक राघव मच्छ का होता है, तो इतना बड़ा औदारिक शरीर है। तंडुल मच्छ का तो चावल के दाने, महामत्स्य राघव मच्छ नाम है। तो इतना बड़ा शरीर होते हुए भी उसमें प्रदेश जो होता है वो वैकृत शरीर की अपेक्षा से कम होते हैं। वैकृत शरीर लोहे का गोला समझ लो, और ये जो औदारिक शरीर है वो उसका गोला समझ लो, अर्कतूल का। अथोत्तरयो किम समप्रदेशत्व उदास्ति कश्चित विशेष इति अतः। अब आगे वाले जो दो शरीर बाकी रह गए, अब ये तो तेजस तक के हिसाब हो गया पूरा, यानी फिर वैकृत से आहारक शरीर में ज्यादा प्रदेश होंगे, लेकिन आगे के तेजस और कारमण बाकी रह गए, उनमें क्या हिसाब है प्रदेशों का? तो आचार्य कहते हैं अनंत गुणे परे होते प्रदेश। प्रदेशत इत्य अनुवर्तित, प्रदेशत ये जो सूत्र के पहले था ना 38 में, उसका अनुवर्तन कर लेना, यहाँ भी जोड़ लेना, तेन एवं अभी संबंध क्रियते, इस उसके फिर इस प्रकार से ऐसे संबंध जोड़ लेना चाहते। आहार का तेजसम प्रदेशतो अनंत गुणम, आहारक शरीर से अनंत गुणे प्रदेश तेजस शरीर में। तेजसात कारमणम प्रदेशतो अनंत गुणम इति, तेजस की अपेक्षा कारमण शरीर प्रदेश की अपेक्षा अनंत गुण है। इस तरह को गुणकारक, गुणा कितना करना है अनंत में? अभव्या नाम अनंत गुण, अभव्यों से अनंत गुण अधिक प्रदेश ले लेना, और सिद्धा नाम अनंत भाग, सिद्धों के अनंत में भाग, तो इतना गुणा करना पड़ेगा। यानी एक समय प्रबद्ध का परिमाण होता है, एक समय में जो कर्म परमाणु आते हैं जीव में आत्मा के प्रदेशों में, उतने परमाणु कितने होते हैं वो? तो सिद्धों से अनंत में भाग होते हैं और अभव्य जीवों से अनंत गुणे होते हैं, तो उतना इसमें गुणा कर देना, आहारक शरीर के जितने प्रदेश हैं उसमें इतना अनंत गुणा कर दो तो तेजस शरीर के प्रदेश आ जाएंगे, तेजस में इतना ही अनंत और गुणा कर दो तो कारमण के प्रदेश आ जाएंगे। तो कारमण शरीर में कितने प्रदेश हैं सोचो। तत्त्रैतत् स्यात् छल्यकवत् मूर्तिमत् द्रव्योपचितत्वात् संसारिणो जीवस्याभिप्रेत गति निरोध प्रसंग इति तन्न किं कारणं यस्माद् उभे अपि एते। बोलते हैं कि तत्र उनमें एतत् स्यात्, ऐसा हो सकता है कि छल्यकवत् मूर्तिमत् द्रव्योपचित चितत्वात्, शल्यकवत् माने खीले के समान, रूपी पदार्थ के संचय से बने हैं ये सारे शरीर पांचों, तो इसलिए जैसे खीला जो है उसको ठोकने के लिए बहुत ठोका पीट करनी पड़ती है, वैसे ये शरीर भी सब जगह टकराते होंगे। तो जीवस्य अभिप्रेत गति निरोध प्रसंग, फिर जीव जहाँ जाना चाहे वहाँ कैसे जा सकता है? सब जगह ये शरीर टकराएंगे कैसे जाएगा जीव इधर उधर? तो फिर उसका उत्तर देते हैं कि नहीं टकराएगा, कारण उसका ये है अप्रतिघाते, ये दो शरीर जो आखिरी वाले हैं वो किसी से टकराते ही नहीं हैं, इनका ऐसा परिणाम है। मूर्ति मतो मूर्ति अंतरेण व्याघात प्रतिघात, किसी पुद्गल का दूसरे पुद्गल से टकराना प्रतिघात है, पर से नास्तनियोर रीति अप्रतिघाते, जो इन दोनों के पास वो टक्कर नहीं है इसलिए ये अप्रतिघात है। सूक्ष्म परिणामात, क्योंकि इनका परिणाम जो है तेजस का और कारमण का सूक्ष्म परिणाम है, इसलिए टकराते नहीं है। प्रदेश ज़्यादा भले हो, परमाणु अधिक हो तो भी कोई चिंता नहीं, टकराते नहीं। अयह पिंडे, जैसे अग्नि का पिंड है वो तेजो नुप्रवेशवत, जैसे अग्नि पिंड में अग्नि का प्रवेश, जैसे अयह पिंड में लोहे के पिंड में अग्नि प्रविष्ट हो जाती है, वैसे तेजस कारमणियोर नास्ति वज्रपटलादिषु व्याघातः। तो अग्नि जिस प्रकार लोहे में प्रविष्ट हो जाती है, वैसे तेजस कारमण शरीर कहीं भी प्रवेश हो जाते कर जाते हैं। वज्रपटल यानी हीरे के पटल में भी उनका व्याघात नहीं होता, वो रुकते नहीं है। ननु च शंका और है, वैकृक आहारक योर अपि नास्ति प्रतिघात। कोई शंकाकार कहता है कि वैकृक और आहारक शरीर में भी टक्कर तो नहीं होती। सर्वत्रा प्रतिघातोत्र विवक्षित, यहाँ पर सब जगह अप्रतिघात विवक्षित है, क्योंकि वैकृक और आहारक जो है वो अपनी सीमा तक तो प्रतिघात को टक्कर को प्राप्त नहीं होते, लेकिन उसके आगे मानुषोत्तर पर्वत के बाद आहारक शरीर मानुषोत्तर पर्वत से टकरा कर वापस आ जाता है, उसके आगे नहीं जा सकते। मतलब टक्कर तो हो रही ना, बाकी जगह चला जाए लेकिन टकरा तो रहा है। वैसे वैकृक है, अब वैकृक जैसे 12वें स्वर्ग तक का जो देव है वो नीचे 3री पृथ्वी तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाएगा, वहाँ उसका अड़चन आ जाती, रुक जाता। तो यहाँ पर तेजस कारण शरीर जो है वो सर्वत्र पूरे लोक में 343 राज्यों में कहीं भी टक्कर को प्राप्त नहीं हो सकते। यथा जिस प्रकार तेजस कारण यो रा लोकांतात सर्वत्र नास्तिक प्रतिघात, तेजस और कारण शरीर में लोक के अंत पर्यंत कहीं भी प्रतिघात नहीं है, न तथा वैकृक आहारक यो, उस प्रकार वैकृक और आहारक शरीरों में ऐसा नहीं होता, वो अपनी सीमा तक ही आ जा सकते हैं। आह किम एतावान एव विशेष उत कश्चित अन्योप्यस्ति इत्याह, क्या इतना ही फर्क है या और भी कुछ अंतर है इनमें? तो आचार्य कहते हैं कि है, अनादि संबंधीच, ये जो दो शरीर है ये अनादिकाल से जुड़े हुए हैं आत्मा के साथ। बाकी शरीर छूट जाते हैं लेकिन ये शरीर छूटते नहीं। च शब्द विकल्पार्थ, च शब्द जो है भेद के लिए, अनादि संबंधे सादि संबंधे चेति, अनादि संबंध भी है और च यानी सादी संबंध वाले भी हैं। कार्य कारण भाव संतत्या अनादि संबंध, कार्य कारण भाव की संतति को देखोगे तो फिर जैसे बीज और वृक्ष, बीज और वृक्ष, बीज और वृक्ष कब से चले आ रहे हैं? अनादि से। अब कोई नए वृक्ष को देखोगे तो विशेषापेक्षा सादी संबंध है बीज वृक्षवत, नए वृक्ष को देखोगे तो क्या होगा कि ये अभी 4 साल पुराना है, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। वैसे नए कर्म जो बन गए हैं कारमण शरीर में आकर, उसकी अपेक्षा से कारमण शरीर को क्या बोलेगा? नवीन है। लेकिन परंपरा की अपेक्षा से कारमण हमेशा से, इसलिए अनादि। यथोदारिक वैक्रियक आहारकाणी जीवस्य कदाचित्कानी, जैसे कदाचित्कानी औदारिक वैक्रियक और आहारक, ये तीन प्रकार के शरीर जीव के पास कदाचित्कानी किसी समय होते हैं, न तथा तेजस कारमण, तेजस और कारमण के साथ ये बात नहीं है। क्यों? नित्य संबंधिनी ही ते आ संसार क्षयात, क्योंकि वे दो शरीर नित्य ही संबंध रखने वाले होते हैं, जब तक संसार समाप्त नहीं हो जाता तब तक। ते ते तेजस कारमणि किं कस्यचिदेव भवत उताविशेषेण इति अतः, बोले कि क्या वे तेजस और कारमण किसी जीव के पास होते हैं या फिर समान रूप से सबके पास होते हैं? तो आचार्य कहते हैं सर्वस्य, सबके पास। सर्व शब्दों निरवशेष वाची, सर्व शब्द का मतलब सब, कोई छूटे ना। निरवशेष से संसारिणो जीवस, समस्त संसारी जीव के पास ते द्वे अपि शरीरे भवत इति अर्थ है, वे दोनों ही शरीर होते हैं, ये इसका अर्थ है। अविशेष अभिधानात तैर औदारिकादिभिः सर्वस्य संसारिणो योगपद्येन संबंध प्रसंगे संभवी शरीर प्रदर्शनार्थम उच्यते, बोले कि समान रूप से आपने कथन कर दिया कि सबके पास होते हैं, तो फिर औदारिक आदि की अपेक्षा सभी संसारी जीवों में एक साथ संबंध को प्राप्त हो जाएंगे, संबंध का प्रसंग आ जाएगा, तो इसलिए एक साथ कितने शरीर संभव है? 5 शरीर बताए आपने, तो एक साथ 5 शरीर होंगे क्या किसी जीव के पास? 4 होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे? तो उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र है, तदादीन भाज्यानि उपदेकस्या चतुर्भ्यः, उस तत् आदिनी, तत् माने तेजस कारण, इनको आदि लेकर युगपत एक साथ एकस्य एक जीव के पास आ चतुर्व्य भाज्यानी, चार तक के शरीर विभाजित कर सकते हो। तत्शब्द प्रकृत तेजस कारण प्रतिपद निर्देशार्थ, प्रकरण में आए हुए तेजस और कारण का प्रतिनिर्देश करने के लिए तत्शब्द। ते तेजस कारमणे आदि येषां तानि तदादीनि, वो आदि में है जिनके, वे तेजस कारमण हुए। भाज्यानि विकल्प्यानि, भाज्यानि यानी विकल्प कर सकते हैं, भेद बना सकते हैं। आ कुतः, कहाँ तक के? आ चतुर्भ्य, चार शरीर तक के एक साथ हो सकते हैं जीव में। युगपद एकस्य आत्मनः, एक साथ एक आत्मा के पास। कस्यचित् द्वे तेजस कारमणि, किसी के पास दो तेजस्वर कारमण शरीर रहते हैं विग्रह गति वालों के। और अपरस्य, और किसी दूसरे के पास त्रीणि औदारिक तेजस कारमणानि वैक्रियक तेजस कारमणानि, वा औदारिक तेजस और कारमण होंगे अथवा वैक्रियक तेजस और कारमण होंगे, तीन शरीर। अभी अपने पास कौन से हैं? औदारिक तेजस कारमण, ये तीन हैं। और देवों के पास, नारक जीवों के पास वैक्रियक तेजस और कारमण। अन्यस्य, और कोई और अगर हों तो उनके पास औदारिक आहारक तेजस कारमणानीति विभाग क्रियते। औदारिक आहारक तेजस और कारमण, ऐसे चार शरीर भी हो सकते हैं, ऐसा विभाजन कर लेना चाहिए। पुनरपि तेषां विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह, फिर भी उनकी और विशेष जानकारी के लिए आचार्य कहते हैं, निरुपभोग मंत्यम, अंतिम शरीर जो कारमण है वो उपभोग से रहित है। अंते भवम अंत्यम, अंत में होने वाला जो शरीर है, सूत्र के अंत में कौन सा शरीर था? कारमण। किं तत् कारमणम्? इंद्रिय प्रणालिकया, इंद्रियों की प्रणाली द्वारा शब्दाधीनाम, शब्दादि की उपलब्धि उपभोग, जो उपलब्धि होती है अपने को इंद्रियों के द्वारा, उसको उपभोग कहते हैं। तदभावा निरुपभोगम, और कारमण शरीर इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिए उसको निरुपभोग कहा गया है। विग्रहगत सत्याम अपनी इंद्रिय लब्ध, विग्रहगति में इंद्रियों की उपलब्धि होने पर भी द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्त भावात्, द्रव्येन्द्रिय की रचना का अभाव होने के कारण शब्दाद्युपभोगाम भाव इति, शब्द अधिक के उपभोग का अभाव रहता है। ननु तेजसों भी निरुपभोगम, बोले कि फिर तो तेजस भी निरुपभोग है। तत्र किमुच्यते निरुपभोगम अंत्यमिति, इसलिए उस सूत्र में ये क्यों कह रहे हैं आपके कारमण शरीर निरुपभोग है, तेजस भी निरुपभोग है? तो आचार्य जवाब देते हैं, तेजसम शरीर योगिना योग निमित्तम अपि न भवति, बोले कि तेजस शरीर जो होता है वो योग में भी निमित्त नहीं बनता। इसलिए तथा अस्य उपभोग विचार इन अधिकार, इसलिए इसके उपभोग के तो विचार का ही कोई अधिकार या प्रकरण नहीं है, जो जिससे योग भी नहीं उत्पन्न हो सकता। वैक्रिक से वैक्रिक का योग होता है, आहारक से आहारक का योग होता है, औदारिक से औदारिक का योग होता है, कारमण से कारमण का योग होता है, तेजस का योग ही नहीं होता तेजस शरीर से, तो फिर उपभोग होने की तो बात ही छूट गई। इसलिए कह रहे हैं कि कारमण शरीर निरुपभोग है। एवं तत्रोक्त लक्षणेषु जन्मसु अमूनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि किम अविशेषेण भवन्ति उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इति यतः। इस तरह उन कहे हुए लक्षणों वाले जन्मों में इन शरीरों का प्रादुर्भाव, या ये शरीर पांच प्रकार के शरीर प्रादुर्भाव को प्राप्त होते हुए, अथवा कौन से शरीर जन्म के समय कौन से शरीर होंगे, ये औदारिक और वैक्रिय, तो प्राप्त होते हुए किम अविशेषेण भवन्ति, क्या समान रूप से सभी को सभी प्रकार के शरीर हो जाते हैं, या फिर कोई उसमें नियम है? तो आचार्य कहते हैं कि हाँ, उनमें कुछ भेद है। गर्भ सम्मूर्छन जो माध्यम है, आद्यम यानी औदारिकम, औदारिक शरीर जो होता है गर्भ और सम्मूर्छन जन्म वाले जीवों का ही होता है। सूत्र क्रमापेक्षा आदो भव आद्यम, सूत्र में जो क्रम रखा गया है उसकी अपेक्षा से जो सबसे पहले होने वाला है वो आद्य कहलाए, औदारिकम इत्यर्थ, उसका नाम औदारिक है। यद गर्भजन्म यज्ञ सम्मूर्छन जन्म तत्सर्व औदारिकम द्रष्टव्यम, जो गर्भ जन्म से होने वाला और जो सम्मूर्छन जन्म से होने वाला शरीर होता है वो सारा ही औदारिक मान लेना चाहिए। तदनंतर यह निर्दिष्टम तथे कस्मिन जन्म नीति यदाह, उसके बाद जो वैक्रिक नाम दिया था वो कौन से जन्म वालों में होता है या किस जन्म में उत्पन्न होता है, तो आचार्य कहते हैं औपपादिकम वैक्रियकम, उपपाद एवं औपपादिकम, औपपादिक जो होते हैं जो शरीर वो वैक्रिक शरीर होता है, सर्वम वैक्रियकम वेदी गम्यम, जो उपाद से जन्म लेने वाले जीव हैं उनका जो भी शरीर होगा वो औपपादिक कहलाएगा, और औपपादिक जो भी शरीर बनेगा वो वैक्रियक होगा, ये नियम है। यदि औपपादिकम वैक्रियकम, यदि औपपादिक जो शरीर है वो वैक्रियक है, अनौपपादिकस्य वैक्रियक वैक्रीयकत्वाभाव इति यत आह, जो औपपादिक नहीं है उनमें वैक्रीकपने का अभाव हो जाएगा। इसलिए आचार्य अगला सूत्र कहते हैं लब्धि प्रत्ययच, रिद्धि के कारण से भी हो जाता है वैक्रीक शरीर। च शब्देन, च शब्द से क्या वैक्रीकम अभिसंबद्धते, वैक्रीक का संबंध जोड़ लेना चाहिए।